मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने तुमसे कहे सुनाया कि भगवान ने किस प्रकार प्रथम सुकर अवतार धारण किया और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वो तुम्हें सुना दिया। तात्पर्य, यहाँ मैत्रेय मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध को सरल आख्यान के रूप में कहे सुनाया है। उन्होंने अपनी ओर से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा, वरना जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कहे सुनाया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रामाणिक माना। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से सुना न जाए, किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। यह भी कहा गया है कि यद्यपि हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु भगवान के लिए वो खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने तोड़ देता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्यों की दृष्टि में भले ही आसुर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान को ऐसे आसुर के मारने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे लाखों आसुरों का वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों से खेलकर उन्हें तोड़ डालता है। तो हम पिछले कई श्लोकों से चर्चा करते आए हैं कि किस प्रकार भगवान के हृदय में ये इच्छा जागृत होती है कि वो जो एक प्रकार से जो वीर रस हैं उसका आस्वादन करना चाहते हैं या वो युद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान इतने अद्भुत और शौर्यशाली हैं, शक्तिशाली हैं कि इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति या प्राणी नहीं है जो उनसे युद्ध कर सकता है। तो इसलिए भगवान अपने भक्त को ही चूज करते हैं, चुनते हैं अपने से युद्ध करने के लिए। और जैसे हमने पीछे सुना है कि जय और विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल हैं वह अवतरित होते हैं यहाँ, और दीति के गर्भ से उनका जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। तो इन कई श्लोकों में सुना कि किस प्रकार भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करते हैं और हिरण्यक्ष के साथ युद्ध करते हैं, और श्रीमद् भागवतम में बहुत इस घनघोर युद्ध का वर्णन श्रील शुकदेव गोस्वामी करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में संवाद के अंदर संवाद हैं, कई सारे संवाद हैं। तो ये जो संवाद है मैत्रेय और विदुर जी के बीच में हो रहा है, तो मैत्रेय बड़े ही उत्साह से और आनंद से कृष्ण की इस दिव्य लीला का वर्णन करते हैं, और विदुर भी उतनी ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ और तीव्रता के साथ इस लीला को सुनते हैं। तो ये लीला वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने एक उनके चापट मारी और उस कारण उस असुर का वध हुआ, और फिर कहा देवताओं की प्रार्थना हुई, और फिर मैत्रेय ने कहा कि भगवान ऐसे जो अद्भुत कार्य करने वाले हैं, जो आदि सुकर के रूप में उन्होंने जो अवतार ग्रहण किया था, वो पुनः अपने धाम चले जाते हैं। और वो धाम कैसे हैं? अखंडित उत्सव, कि उनके धाम में जो फेस्टिविटीज हैं, फेस्टिवल्स का कभी खंड नहीं होता है, हर समय उत्सव होता है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और आज के श्लोक में मैत्रेय मुनि विदुर जी को इस बात को बताते हैं कि मया यथानुक्तम ववादिम ते हरे, कि मैंने दो व्याख्या की है भगवान की इस अवतार की। तो ये मैंने मेरे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे मैंने सुना था। और साथ साथ इस बात का भी वर्णन करते हैं कि जो हिरण्याक्ष था वो उसका जो कार्य थे वो उदार विक्रमो, वो कहते कि वो शक्तिशाली था, और उसने भी भगवान के साथ बहुत शूरता से युद्ध किया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इसी बात पर श्रील प्रभुपाद दो चीजों पर जोर देते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को ये आवश्यक है अपने आध्यात्मिक जीवन में कि प्रामाणिक जो सोर्स है, उगम स्थान है, वहां से ही केवल कृष्ण कथा का श्रवण करें। जैसे कल श्रीराम प्रभु ने सुनाया था कि हमें प्रामाणिक स्रोत से कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए और कृष्ण की कथा को सुनने के लिए उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की जो कथा है वो बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली है। और जो भगवान के बारे में नियमित रूप से सुनते हैं तो उनके भक्ति का पोषण होता है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जोर देते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए या सुनना चाहिए, लेकिन कैसे? परंपरा के माध्यम से। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी इस बात का स्थापना करते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो विज्ञान मैंने पहले भी दिया था जो सूर्य के देवता विवस्वान को, लेकिन कालांतरण में ये जो परंपरा नष्ट हुई, और हे अर्जुन मैं तुम्हें पुनः इस ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान इस परंपरा को स्थापित करते हैं। और भगवान का एक उद्देश्य भी है भगवद गीता को संस्कृत में बोलने का, क्योंकि भगवान अंग्रेजी भाषा में यदि भगवद गीता का उपदेश देते तो फिर कई सारे लोग उसको उपदेश को चेंज कर देते हैं, कई प्रकार की टीकाएं लिखते हैं। लेकिन भगवान ने जानबूझकर संस्कृत में उपदेश दिया कि कई सारे आचार्य आएंगे और इस संस्कृत, क्योंकि सामान्य लोगों को ये जो संस्कृत है उनके ज्ञान से परे है, तो जो आचार्य गण आएंगे और वो भगवान के संदेश को यथारूप प्रस्तुत कर पाएंगे या करेंगे सामान्य जनता के सामने। तो भगवान ने इस प्रकार से ये ज्ञान संस्कृत भाषा में प्रदान किया भगवद गीता का भी, और इस बात पर जोर दिया कि परंपरा से सुनो। तो परंपरा में केवल उनके भक्तगण आते हैं और वही भगवान के इस रहस्यमय संवाद को समझ सकते हैं और उनके रहस्यमय लीलाओं को जान सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि भक्तों सी में सखा चेती। तो इस प्रकार से कृष्ण इस बात को स्थापित करते हैं। और 13वें अध्याय में भी जब भगवान क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है उसकी जब चर्चा करते हैं तो वहां श्रवण की महत्वता को भी भगवान स्थापित करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कहा, जैसे भी कोई उनका गुणगान करता था, कि आपने इतना अद्भुत कार्य किया है कि सारे विश्व को आपने कृष्ण भावना प्रदान की है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये मेरा पर्सनल कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो मेरे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने ये सारा कार्य किया है, लेकिन मेरी योग्यता क्या है कि मैंने बिना मिलावट के इस संदेश को आप लोगों के सामने यथावत रखा है, यही एक मेरा गुण है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी अपने गुरु महाराज से बहुत गंभीरता से सुना था। और प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि मेरा हॉबी था, क्या हॉबी था कि मेरे गुरु से सुनना, ये मेरा हॉबी था मेरे लाइफ में। मैं जब भी भक्ति सिद्धांत महाराज से श्रील प्रभुपाद केवल 12 बार मिले थे और जब भी मिलते थे तो उनसे सुनते थे। तो प्रभुपाद कई बार कहते थे कि मुझे समझ में तो आता नहीं था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज को सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता था, उनकी बंगाली जो प्रवचन है वो भी बहुत कठिन होते थे और बहुत उन्नत विषयों की चर्चा करते थे, और उनका अंग्रेजी जो ब्रह्म संहिता किताब है वो आप अंग्रेजी या फिर उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है तो वो दोनों भी बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे उनसे सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो जब श्रील प्रभुपाद का इलाहाबाद में दीक्षा हुआ तो जो उस समय श्रीधर स्वामी थे उन्होंने रिकमेंड किया कि ये दीक्षा ले सकते हैं अभय, तो प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज ने तुरंत कहा हाँ हाँ ये योग्य है, क्योंकि इसको सुनने में रुचि है। बल्कि श्रील प्रभुपाद उनके मठ को हर महीने कई सारा दान देते थे और कई प्रकार से उनके भक्तों की सहायता करते थे। जैसे मुंबई में भी गौड़िया मठ प्रभुपाद के द्वारा ही सहायता के बाद ही खुल पाया। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्रील प्रभुपाद जो अभय थे उनका गुणगान कभी इसलिए नहीं किया कि ये बहुत धन देता है या फिर ये बहुत कई चीजें करता है, लेकिन हमेशा अपने शिष्यों के बीच अभय का भक्ति सिद्धांत महाराज गुणगान करते हैं कि ये मुझसे कृष्ण कथा को सुनने में हर समय लालायित रहता है। और इसलिए जब प्रभुपाद अपने प्रवचन देते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि मैंने अच्छी तरह से मेरे आध्यात्मिक गुरु से सुना है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में जो श्रवण है। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि हियरिंग इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि जो सुनना है वो आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। और जब नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद महाराज करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात को ही बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवणम इस बात को वो बोलते हैं, लेकिन किसके बारे में हमें श्रवण करना चाहिए? विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में। केवल हमें जब हम चर्चा करते हैं कि श्रवण करना है, श्रवण करना है, लेकिन भगवान के कार्यकलापों को हम सुनते ही नहीं और या उनका कीर्तन नहीं करते। यदि हम भगवान के कार्यकलापों को सुनेंगे नहीं तो भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों की, उनके गुणों की, उनके दिव्य रूप की, उनके नाम की महिमा की हम चर्चा नहीं कर सकते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने आचरण से इस बात को स्थापित करते हैं। और श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो शुरुआत में, उसके मध्य में और उसके अंत में केवल कृष्ण की कथा को सुनने की जो महिमा है उससे भरा हुआ है। शुरुआत में आप पढ़ेंगे पहले स्कंद में तो इतना शुकदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, व्यासदेव, कृष्ण की इन दिव्य कार्यकलापों का जो श्रवण है उसका गुणगान करते हैं। और ये स्थापना करना चाहते हैं कि किसी भी भक्त के जीवन के लिए या उसके भक्ति के पोषण के लिए यह श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे कि जब भी जीवन में विपदाएं आती हैं तभी इन दिव्य ग्रंथों का जन्म हुआ है। जैसे राजा परीक्षित के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया था, उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली थी, तो उस समय श्रीमद् भागवतम का जन्म हुआ और उन्होंने सुना। तो विपदाओं से मुक्त होना है तो एक ही जो उपाय हमारे जो शास्त्र और आचार्य बताते हैं कि भगवान के बारे में सुनने के लिए वो लालसा हमें जागृत करनी होगी। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता का भी जो जन्म हुआ है वो भी अर्जुन की समस्या का निवारण करने के लिए, और अर्जुन ने सुना और सुनकर क्या कहा, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, कि हे अच्युत कृष्ण, आपसे मैंने ये दिव्य संदेश को सुना है तो इससे मेरा जो मोह है, इस भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है और ये जो इल्यूजन है वो खत्म हुआ है। तो इसलिए ये श्रवण हम कई बार उसको महत्वता नहीं देते हैं। प्रभुपाद का ये दिनचर्या थी, या प्रभुपाद ने अपने इस मिशन को स्थापित किया तो उसके साथ साथ इस बात को भी उतना ही शक्ति से प्रभुपाद ने स्थापित किया कि व्यक्ति को रोज श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए और भगवद गीता को सुनना चाहिए। तो ऐसा हम श्रवण करेंगे श्री श्री राधपार सारथी की, ऐसा हम श्रवण करेंगे तो फिर जो भौतिक जीवन में जो अशांति है, असंतुष्टि है, भौतिक चीजों के लिए जो हैंकरिंग है वो खत्म हो सकती है। वो क्यों है, भौतिक विषयों के लिए तृष्णा क्यों है? क्योंकि हम कृष्ण के बारे में सुनते नहीं हैं, इसलिए हमें भौतिक तृष्णा है। और जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमारे हृदय में वितृष्णा जागृत होती है, मतलब भौतिक चीजों के लिए जो तृष्णा है वो खत्म हो जाती है। और यही एक कारण था जो महान भक्त कृष्ण द्वापायन व्यास, जिन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की, उन्होंने कई सारे प्रवचन दिए, कितनी चीजें की, लेकिन इतने सारे ग्रंथों का प्रणयन करने के बाद भी उनके हृदय में संतुष्टि अनुभव नहीं हो रही थी। और एक प्रकार से वो इतने सीनियर भक्त हो गए थे, व्यासदेव से कोई सीनियर है नहीं हो सकता, तो लेकिन फिर भी उनके हृदय में अशांति थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के दिव्य जो चरित्र है उनका गुणगान नहीं किया था। जब नारद आए तो उन्होंने कहा न तथा वासुदेवश, कि आपने जो वासुदेव है महिमा ही अनुवर्णित, कि वासुदेव की जो महिमा है आपने उसका वर्णन नहीं किया है। और इस महिमा की, महिमा को स्थापित करने के लिए कि ये कितना आवश्यक है एक भक्त के जीवन में कि कृष्ण के बारे में सुनना और भगवान के बारे में बोलना, तो इस बात को स्थापित करने के लिए नारद जी ने क्या बताया, अपना खुद का जीवन चरित्र बताया व्यास को कि अरे व्यास देखो मेरे जीवन से सीखो कि मैं पहले दासी पुत्र था, लेकिन दासी पुत्र से पहले भी क्या था, गंधर्व लोक में उपबरहन नाम का गंधर्व था और वहां मुझे प्रजापतियों ने और देवताओं ने इनवाइट किया। इस बात को वो सातवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं कि मैं गंधर्व लोक में एक गंधर्व था। जब उन्होंने, क्योंकि गंधर्व लोक में केवल वही लोग निवास करते हैं जो बहुत अधिक सुंदर होते हैं और जो गाने में बजाने में, ये गंधर्व कला है गाना बजाना, तो उनमें बहुत अधिक निपुण होते हैं। तो उनको जब इनवाइट किया कि आप भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करो, तो उन्होंने जब ये उपबरहन गंधर्व आए देवताओं के बीच और उन्होंने देवताओं का गुणगान करना शुरू किया और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि जैसे कि फिल्मी गाने वो गाने लगे, तो फिर देवताओं ने प्रजापतियों ने उनको शाप दिया कि आप शूद्र बन जाओ। तो यदि कृष्ण का गुणगान नहीं करेंगे तो इस प्रकार से निम्न योनियों में व्यक्ति का जो प्रयाण हो सकता है। और वो कहते हैं लेकिन मैं दासी पुत्र के मैंने मुझे जन्म प्राप्त हुआ और मेरी माँ बहुत अधिक गरीब थी जो दूसरों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करती थी और मेरा भी ध्यान रखती थी और मेरी माँ का एक गुण था कि जो भी साधु आते थे उनकी सेवा करती थी। तो कहते थे कि हमारे उस एरिया में चातुर्मास के लिए कई सारे भक्ति वेदांत साधुओं ने निवास किया था, तो मेरी जो माता है उनकी सेवा करती थी और उसको देखकर मैं भी उन साधुओं की सेवाओं में लगा और साधुओं की सेवा करते करते मैंने क्या किया, क्योंकि साधु लोग जब आपस में बैठते हैं तो वो केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मत चित्ता जिनका जो चित्त है जिनका मन है मुझ में लगा है, मदगत प्राणा जिनका जीवन मेरे लिए समर्पित है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, ऐसे भक्त मिलते हैं और आपस में बोध कराते हैं एक दूसरे को याद दिलाते हैं। भक्तों के हम बीच में रहते हैं और उनका संग का मतलब क्या है कि भक्त एक दूसरे को याद कराए कृष्ण और कृष्ण की जो महिमा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, वो मेरे बारे में हमेशा चर्चा करते हैं कथा करते हैं और इसी से वो क्या करते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे भक्त इसी चीज से आनंद अनुभव करते हैं और यही चीज केवल हमें आनंद प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार से भगवान भी इस भगवद गीता में इस बात को स्थापित करते हैं और नारद जो दासी पुत्र थे उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा बालक था मुझे कोई खेल कूद में कोई आसक्ति नहीं थी, आज जब भी मुझे समय निकालता था मैं साधुओं की सेवा करता था और उनके चरणों में जाकर उनसे कृष्ण की दिव्य कथाओं को सुनता था। तो नारद जी कहते हैं तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता अनुग्रहेना शुनवन मनोहरा, तो कहते कि ऐसी जो कृष्ण कथा है ये साधुगण गाते थे प्रगायता और उनके अनुग्रह के कारण मैंने क्या किया उन कृष्ण कथा को सुना जो मनोहर है मनोहरा कान को आनंद देने वाली है। ताशद्दया मेनुपदं विशुन्वता प्रिय शव संगम माधवद्रुचि, तो कहते कि ऐसी जो कृष्ण कथा है मैंने अपने कान से बहुत ध्यान से सुनी और प्रिय श्रवश जो भगवान है प्रिय श्रवश कृष्ण को कहा जाता है उनके प्रति ममाद भवद रुचि, मेरे हृदय में इतनी रुचि और इतनी आसक्ति जागृत हुई कि मुझे रहा नहीं जाता था उनके बारे में सुनने के अलावा। तो इस प्रकार से और नारद ने सुना और आगे क्या करने लगे, वो जब नारद का ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ तो नारद के इस फॉर्म में वो क्या करते थे, नारद मुनि बाजाय बिना राधिका रमन नामे, कि ऐसे नारद मुनि जब उन्होंने इतना सुना था वैष्णवन से कृष्ण कथा को इतनी गंभीरता से कि जब वो नारद बने तो उनके मुख से कृष्ण कथा के अलावा कृष्ण के नाम रूप गुण और उनकी दिव्य लीलाओं का गान करने के अलावा कोई भी चीज निकलती नहीं थी। राधिका रमन नामे भगवान के दिव्य नामों का वो केवल कीर्तन करते रहते थे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये जो कृष्ण कथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रभुपाद ने अपने सारे ग्रंथों में सारे तात्पर्य में इस बात को बहुत स्ट्रांगली स्थापित किया है, कितना अधिक हमें श्रवण करना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद ने इस श्लोक को बहुत बार कोट किया है कई तात्पर्य में, और कि श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहे उदय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है। कि हम सबके हृदय में ये जो कृष्ण भावना है सुप्त रूप से है, लेकिन उसको जागृत करना है तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि हमें बहुत गहराई से कृष्ण के बारे में सुनना होगा और ये कृष्ण भावना जागृत हो सकती है। और इसी बात को कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता के सातवें अध्याय में, कृष्ण कहते हैं मया सप्त मनः पार्थ, कि हे पार्थ मुझमें यदि आसक्त होना चाहते हो तो क्या करो, यथा ज्ञास्यसि तत् सुनो, केवल सुनो। इस प्रकार से कृष्ण भी पूरे भगवद गीता में अर्जुन को सुनने के लिए बहुत फोर्स करते हैं। और कृष्ण ने भी जब अपने दिव्य लीलाएं प्रकट की थी इस भौतिक जगत में वृंदावन में, तो वहां भी उन्होंने इस बात को स्थापित किया। और कृष्ण और उनके जो महान भक्त हुए हैं, जो महान आचार्य गण हैं, उन्होंने भी अपने जीव चरित्र से इस बात को दिखाया है, अपने उदाहरण से सिखाया है कि कितना अधिक भगवान के बारे में सुनने के लिए लालसा होनी चाहिए। जैसे कि आजकल लोग, जैसे श्रीराम प्रभु कल कह रहे थे कि लोग भागवत कथा सुनते हैं, और भागवत कथा एक बिजनेस बन गया है जो धन अर्जन और जीविका चलाने का एक माध्यम है, और हर कोई अभी भागवतम सीखता है वृंदावन में जाकर, और भागवत की ऐसी किताबें भी मिलती हैं कि आज के दिन आपको क्या बोलना है, कौन से गाने गाने हैं, कौन से छोटे छोटे चुटकुले सुनाने हैं, वो पूरा प्रिपेयर्ड लेक्चर होता है। आप बस वो पेज, दो तीन पेजेस होते हैं जो अपने सामने रखो, और पूरा भागवत कथा सुबह का सेशन और शाम का सेशन आप कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा बोलने का अभ्यास है। तो इस प्रकार से क्योंकि कुछ चीजें हैं इसमें आपको आदर भी मिलेगा, आपका गुणगान भी होगा, धन भी मिलेगा और सब कुछ होगा। तो लोगों ने, क्योंकि आजकल भौतिक जगत में इतना स्लैग आया है कि सारे बैंक्स बंद हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, तो एक बिजनेस हमेशा चलता रहता है जिसका कोई एंड नहीं है, और आपको नए कस्टमर हर समय मिलेंगे इसके सुनाने के लिए, क्योंकि जो ओल्ड हो गए उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर नए लोग और जन्म लेते हैं, उन्होंने कभी भागवत सुनी नहीं होती है तो वो भी सुनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो सप्ताह है, तो सात दिन, मंडे टू सैटरडे, तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने भी सप्ताह शुरू किया है इस्कॉन में, लेकिन ये सप्ताह ऐसा है कि जो पूरे जीवन भर चलता है। हम हर संडे से लेकर सैटरडे तक सुनते हैं, जिसको एक सप्ताह कहा जाता है। सप्ताह का मतलब है कि सात दिन, और फिर से संडे आ जाता है, और फिर से हम सैटरडे तक सुनते हैं, और वो भी खत्म होता है, फिर से संडे आ जाता है। तो प्रभुपाद ने इतना लंबा भागवत सप्ताह दिया है कि हम जीवन भर इस सप्ताह को खत्म नहीं कर सकते, और जिसको प्रभुपाद ने कहा नित्य भागवत सेवयहा। तो इसलिए यदि भागवत का सेवन करना है, सुनना है, तो प्रभुपाद के भागवतम को गंभीरता से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रभुपाद ने किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा समय दिया तो श्रीमद् भागवतम को। जब वो दिल्ली में वृंदावन में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे राधा दामोदर मंदिर में, तो दिल्ली में आते थे अलग अलग वॉल्यूम्स को छपाने के लिए, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री। पहले स्कंद के तीन वॉल्यूम श्रील प्रभुपाद ने प्रिंट किए थे दिल्ली में, और जब ये तीन वॉल्यूम बन गए तो प्रभुपाद नाचने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि अभी मैं विदेश जा सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे अपने साथ ले जाने की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इतना उन्होंने कहा कि ये पहला स्कंद मैंने जो दिया है, और मैं आगे ना भी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर पाऊं तो भगवान के धाम जाने के लिए ये पहला स्कंद क्या है, इनफ है। तो इतना उनमें कन्विक्शन था, इतना श्रद्धा था श्रीमद् भागवतम के प्रति, और वो श्रीमद् भागवतम को लेकर, इस पहले स्कंद को लेकर अमेरिका पहुंचे, और सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर में रहे, तो प्रभुपाद जब उन्होंने भागवत में बोलते थे, और जो कैप्टन था पांडे जिस शिप से गए थे जलदूत जहाज से, उनको भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ये पहला स्कंद सेल किया, बेचा। और जब सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर गए तो वो लोग तो आश्चर्यचकित ही हुए कि एक साधु भी आ गया है हमारे घर। तो क्योंकि उनके पिता, गोपाल अग्रवाल के पिता, मथुरा में निवास करते थे, और उनको बहुत, एक दिन प्रभुपाद मिले उनसे और प्रभुपाद को कहने लगे कि मेरा बेटा अमेरिका में है, लेकिन वो अभी बहुत खराब हो गया है, उसने किसी विदेशी माता से, लेडी से शादी की है, हमारे सारे सभ्यता को खत्म कर दिया है। तो जैसे प्रभुपाद को पता चला कि आपका पुत्र विदेश में है, उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए फिर इन्विटेशन भेज सकता है। तो इन्होंने कहा कि हाँ। तो हर समय, क्योंकि कई सारे मथुरा के लोग या कई लोग जो अमेरिका जाना चाहते थे, तो गोपाल के पिता को हर आप हमारे लिए इन्विटेशन वहां से भेजो। तो वहां से, क्योंकि गोपाल अग्रवाल अमेरिकन सिटीजन नहीं था, तो सैली अग्रवाल लेटर भेजती थी किसी को इनवाइट करना है। तो उन्होंने, सैली अग्रवाल ने लेटर लिखा और नीचे साइन किया, सैली अग्रवाल आप भेज सकते हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। क्योंकि कई सारे लेटर उन्होंने भेजे थे, उनको पता है अमेरिका कोई नहीं आता, ये उनके पिता बस लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे बहुत मेरा बेटा अमेरिका में है, तो इसलिए ये लेटर भेजते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद ऐसे मिले थे जो पहुंच गए। तो प्रभुपाद जब जलदूत जहाज में बैठने वाले थे कलकत्ता में, तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड, एक लेटर लिया और वो लिखने लगे, सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल को लेटर, कि मैं अभी जलदूत में बैठ ही रहा हूं कुछ घंटों के बाद, और मैं यह है कि एक महीने के बाद वहां पहुंचूंगा। तो उस समय जो ये डाक है, एक महीना लगता था अमेरिका पहुंचने के लिए। तो जब श्रील प्रभुपाद बैठे जलदूत में कलकत्ता में, तो वो जलदूत निकला और ये डाक भी यहां से निकला। तो केवल एक या दो दिन पहले वो डाक पहुंचा था और प्रभुपाद पहुंचने से पहले। तो जैसे वो सैली अग्रवाल, अभी रिसेंटली फेस्टिवल हुआ था, तो अभी वो बहुत ओल्ड हो गई है दोनों, सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल, तो उन दोनों ने कहा, उसने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं रही थी कि कोई व्यक्ति आएगा, और फोटो भी प्रभुपाद ने भेजा था कि मुझे आप पहचानो कि मैं इस प्रकार से हूं। तो प्रभुपाद का एक छोटा फोटो जो आप देखेंगे जलदूत डायरी में है, जहां प्रभुपाद ने ऊपर के वस्त्र नहीं पहने हैं, सन्यास का वो योग पट्ट कहते हैं वो पहना था, और हाथ में ऐसा दंडा लेके, और बहुत गंभीर उनका चेहरा दिखाई देता है। तो सैली अग्रवाल ने जब उनका चेहरा देखा तो वो डर ही गए कि ये कौन सा जीव आ रहा है हमारे घर में। तो श्रील प्रभुपाद बस से पहुंचते हैं, फिर उनके हस्बैंड उनके साथ, पोस्ट कार्ड में वो होगा, पहले वो लिफाफा वाला कोई होगा जो लेटर होगा उसमें डाला होगा या चिपकाया होगा, जैसे भी, मतलब फोटो भी पहुंच गया वहां। तो जब उनके हस्बैंड ने उनको ड्राइव करके लाया बस स्टेशन से, तो ये कह रहे थे कि हम तो फिल्मी गाने चलाते रहते थे और रोज मांस खाते थे और फ्रीज में भी मांस होता था, लेकिन कहते हैं प्रभुपाद ना कभी कंप्लेंट नहीं की इस बात की, कहते थे हाँ आप लोग करिए, गाने भी लगाते थे तो आप करिए गाइए, तो लेकिन प्रभुपाद में इतना धैर्य था। और फिर बाद में पता चला कि प्रभुपाद अकेले नहीं है, उनके साथ बड़े बड़े दो या तीन लकड़ी बॉक्स है जिनमें श्रीमद् भागवतम है। तो एक दिन बड़ा मोटर आया ट्रक या सैली अग्रवाल के घर में, जो रुका और वहां से बड़े बड़े जो बॉक्स है श्रीमद् भागवतम भरा हुआ वो निकाला गया बाहर। तो ये दोनों बहुत अधिक डर गए कि ये स्वामी जी ने अपने साथ क्या लाया है। तो फिर उनके घर में जगह नहीं थी, तो कई सामान उन्होंने अपना बाहर कर दिया और पहले श्रीमद् भागवतम को उन्होंने वहां जगह दी। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद को न्यूयॉर्क भेजा, और जब उनको घर शिफ्ट किया उन्होंने तुरंत प्रभुपाद के जाने के बाद, तो प्रभुपाद को कहा कि आपका ये जो भागवतम है ये अपने साथ ले जाइए। तो प्रभुपाद के पास ना रहने का ना खाने का ठिकाना, तो प्रभुपाद ने फिर न्यूयॉर्क में ऐसी व्यवस्था की कि वहां उन्होंने श्रीमद् भागवतम रखने के लिए भी जगह अरेंज की, और जहां भी प्रभुपाद जाते थे हर एक को इसी बात को प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे कि आप श्रीमद् भागवतम को लो, सबसे पहले ये चीजें उन्होंने सेल की थी और इसको पढ़ो। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम हमारे सारे भक्तों ने अपने आचरण से यह भी सिखाया है कि कितना यह श्रीमद् भागवतम एक भक्त के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए और उसको सुनने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए। और इस बात पे जोर दिया गया है कि प्रामाणिक स्तोत्र उगम स्थान से हमें सुनना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि भक्तों के द्वारा, जैसे लॉर्ड चैतन्य कहते हैं, भागवत स्वरूप दामोदर उनके जो सेक्रेटरी थे वो कहते हैं, भागवत सुन गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। यदि चैतन्य महाप्रभु के चरणों का हम आश्रय लेते हैं, उनके दिव्य चरित्र को सुनते हैं, तो श्रीमद् भागवतम समझने में हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत को समझने का सीक्रेट है। इसलिए स्वरूप दामोदर ने कहा कि भागवत पढ़ो, भागवत व्यक्ति के पास, तो श्रील प्रभुपाद भागवत पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए हैं और जिनके द्वारा हम श्रीमद् भागवतम को सुन सकते हैं, तो वो प्रभुपाद जैसे दिव्य भक्त के मुख से सुनना हो जाएगा। क्योंकि भगवान के भक्त के मुख से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के भक्त जो है जब उनसे सुनते हैं तो ये जो श्रीमद् भागवतम है या कृष्ण कथा को क्या करते हैं, दो चीजें प्रदान करते हैं। जैसे हम कोई हमारे पास फोटोग्राफ है जिसमें राधा पार्वती का फोटो है, तो केवल वो फोटो तो टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसको फ्रेम में डालेंगे तो उसकी एक तो सुंदरता बढ़ेगी और एक सुरक्षा, ये दो चीजें होगी। तो ये कृष्ण कथा बिल्कुल वैसी है, यदि हम भगवान के भक्तों के द्वारा सुनते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। जैसे शुकदेव गोस्वामी ने जब भागवतम बोला तो क्या हुआ, वो और अधिक आस्वादनीय हो गया, और दूसरा उसकी सुरक्षा, उसमें कोई और मिलावट नहीं। तो इसी प्रकार से मैत्रेय मुनि यही कह रहे हैं कि मैंने सुना है बहुत गंभीरता से, और इसलिए मैं भी उसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये भागवतम का गुणगान है या श्रवण की महानता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, कि भगवान जो भक्तों के पति हैं सात्वताम पति, उनके बारे में व्यक्ति को श्रोतव्य सबसे पहले सुनना चाहिए, कीर्तितव्य च उनका गुणगान करना चाहिए, देह पूजच नित्यता उनका स्मरण करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये एक भक्त का कार्य है। चार चीजें श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी ने कही हैं और श्रील प्रभुपाद ने हमारे इस कृष्ण भावना आंदोलन में ये चार चीजों को बहुत तीव्रता से लागू किया है। तो इसलिए भगवान के भक्त जब कृष्ण कथा प्रदान करते हैं तो वो वास्तव में कृष्ण उनके मुख में आश्रय लेते हैं। जैसे कि वर्णन आता है कि वयम तू न वित्रुप्याम, आगे कहते स्वादु स्वादुम पदे पदे, कि आप कृष्ण की कथाओं को सुनाइए, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि उनके बारे में सुनने से हमारा जो आनंद है वो और अधिक वर्धन हो रहा है, आनंद और अधिक बढ़ रहा है। क्योंकि कृष्ण क्या है, उत्तम श्लोक विक्रम है, कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है, ये उनका नाम है। क्यों कहा जाता है उत्तम श्लोक, क्योंकि उनका गुणगान शास्त्रों के जो स्तोत्र चुने हुए श्लोकों के द्वारा कृष्ण का गुणगान हुआ है, और किसने किया है, उनके भक्तों ने। लेकिन वास्तव में कृष्ण के भक्त उनका गुणगान नहीं करते, वो स्वयं ही अपना गुणगान करवाते हैं, उनके भक्तों के मुख से ये जो चुने हुए श्लोक वो भगवान ही निकालते हैं। तो जैसे कि ध्रुव महाराज के चरित्र में हम देखते हैं, जब भगवान विष्णु अवतरित हुए तो उनके मुख से कुछ ही नहीं निकल रहा था, भगवान ने उनके सर में शंख टच किया तो ध्रुव महाराज के मुख से इतने अद्भुत प्रार्थनाएं निकलने लगी जो उत्तम श्लोक निकलने लगे, प्रहलाद महाराज। ऐसे कई घटनाएं हैं जिनसे हम सुनते हैं कि कृष्ण जो उत्तम श्लोक है और भगवान के मुख आश्रय लेते हैं और वो स्वयं बोलते हैं। जब चैतन्य चरितामृत का प्रणयन श्रील कृष्णदास कविराज कह रहे थे तो वो लिखते, तो वो कहते हैं यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, वो कहते कि ये जो चैतन्य चरितामृत है ये ग्रंथ मुझसे कौन लिखवा रहा है, मदन मोहन, अमर लिखन जय शुकेर पठन, कहते कि मेरा ये जो लिखन का कार्य है ये मैं तो तोते के समान, तोता रिपीट करता है, वैसे मैं भी रिपीट करता हूं। और उसी प्रकार से उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर का भी गुणगान किया, कृष्णदास कविराज ने। उन्होंने कहा, मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कहते कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं को प्रकट किया है, वो वास्तव में उन्होंने नहीं किया है, वो नहीं बोल रहे हैं, उनके मुख्य आश्रय श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया है। अब वक्ता श्री चैतन्य, स्पीकर कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों के मुख से भगवान ही अपना गुणगान करते हैं, और ये जो कृष्ण कथा है उसको स्थापित करते हैं, उसकी महत्ता को स्थापित करते हैं। तो इसलिए जो भक्त हैं उसको बहुत गंभीरता से भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और जब सुनेंगे तो वो अच्छी तरह से कृष्ण का गुणगान कर सकता है। तो यदि हम यही चीज सीख जाए जीवन में, कृष्ण के बारे में अच्छी तरह से सुनना, तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले स्कंद के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि केवल पढ़ने से आध्यात्मिक जो विषय है वो समझ में नहीं आते, या फिर आपको स्मरण में भी नहीं रहते, लेकिन यदि आप इन आध्यात्मिक विषयों को सुनते हो अच्छी तरह से, और उनको बोलते हो, चर्चा करते हो, तो विषय अच्छी तरह से समझ में आते हैं और वो हृदयंगम हो जाते हैं, आपके हृदय में वो स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए भक्त को केवल चिंता करनी चाहिए तो वो किस चीज की? भगवान के बारे में सुनने की चर्चा करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि सुनना कैसे मैं अधिक से अधिक सुनूं, और फिर कैसे कृष्ण के जो सुना है उसको मैं रिपीट करूं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यूज इट और लूज इट, आप उसको यूज करोगे नहीं तो फिर लूज करोगे। तो इसलिए अच्छी तरह से सुनेंगे तो हम कृष्ण का गुणगान कर पाएंगे। और चाणक्य पंडित ने भी इसी बात को स्थापित किया, वो भी विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने अपना जो चाणक्य नीति लिखा तो वो शुरुआत में ही कहते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंबर गीयते। मैं यदि सीख गया हूं कृष्ण का गुणगान करना, तो मुझे इस संसार में किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कथम न चेत अर्भ के स्तनम विस्तरेत, कि जैसे हम लोग का चिंता, मैं क्या क्यों चिंता करूं मेरे खाने की, रहने की और कई चीजों की। यदि मैं एक चीज सीख गया हूं, या मैं अपनी आसक्ति उत्पन्न कर रहा हूं या किया हूं विश्वंबर का गुणगान करने की, तो मुझे नहीं चिंता करनी है इन चीजों के लिए। क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो अन्न, जो फूडिंग वगैरह है, ये तो सबको अपने आप ही प्राप्त हो रही है। तो वो उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो उसके लिए दूध की व्यवस्था माँ के स्तन में कृष्ण ने तो कर ही ली है। ऐसे नहीं कि कोई डॉक्टर आता है, बच्चा जन्म लेने के साथ साथ इंजेक्शन लगाता है माँ को, कि दूध का इंजेक्शन डाला जा रहा है, कि माँ के अंदर दूध भर देता है कोई नहीं, तो ये कृष्ण इंजेक्ट करते हैं। तो कहते हैं उसकी व्यवस्था कृष्ण ने की है, तो मैं क्यों इतनी चिंता करूं? मैं तो बस यही चिंता करूं कि मैं कैसे कृष्ण का गुणगान करूं। और वो कहते हैं, इति आलोच्य मुहुर मुहुर हे यदुपते हे कमलापते, कि हे यदुपते हे कमलापते लक्ष्मीपति, मैं इस बात को, इस उदाहरण को जब सोचता हूं, इस उदाहरण पर जब चिंतन करता हूं, तो मुहुर मुहुर मुझे हृदय में क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। तब पादाम्बुज सेवनेन मया काल नियते। इसलिए मैंने अभी व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है? तब पादाम्बुज सेवनेन, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों की सेवा करने में ही लगाऊंगा। मया काल विनियते, मैं अपना जो समय है, काल है, वो इसी में ही लगाऊंगा। तो इस प्रकार से चाणक्य पंडित भी इस चीज को स्थापित करते हैं, और कृष्ण कथा का जो श्रवण है उसका वर्णन करते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने विदुर को कृष्ण कथा सुनाई, और जो बहुत अद्भुत और आनंददायी थी। और कल के श्लोक में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से विदुर अपना आनंद व्यक्त करते हैं कि ये कितना अच्छा है कृष्ण के बारे में सुनना। और एक बात स्थापित करते हैं, कि हमें प्रामाणिक सोर्स से कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए अधिक से अधिक, और जो हम सुनेंगे उसी प्रकार से हम कृष्ण का गुणगान कर पाएंगे सही ढंग से। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको प्रैक्टिकल टीचर कहा जाता है, जो अपने आचरण से, आपन ही आचार्य प्रभु सबाई सिखा रहे, हाँ कि अपने आचरण से सबको उन्होंने शिक्षा दी श्रवणम की भी। तो चैतन्य महाप्रभु का दिन क्रम जगन्नाथपुरी में इस प्रकार से था। चैतन्य महाप्रभु सुबह बहुत जल्दी उठते थे और समंदर में जाके स्नान करते थे, और वहां से फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, और गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर भगवान जगन्नाथ का वो दर्शन करते थे। और ऐसा वर्णन आता है कि 7 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते ही रहते थे, और जब फिर भी उनके हृदय में तृप्ति का अनुभव नहीं होता था, और फिर भी रोते हुए वो निकलते थे हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल की ओर, जहाँ हरिदास ठाकुर निवास करते थे। कभी कभी वह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आके निवास करते थे, और फिर हरिदास ठाकुर के पास जाते थे तुलसी और कई थोड़ा सा प्रसाद लेकर, फिर हरिदास ठाकुर से 3 घंटा वहां कृष्ण कथा करते थे, और हरिदास ठाकुर से कृष्ण कथा करने के बाद वो फिर अपना जो निवास स्थान था काशी मिश्र का घर गंभीरा, वहां चले जाते थे, वहां गोविंद और परमानंदपुरी और कई भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करते थे, और फिर निकलते थे, दोपहर हो जाते थे, स्नान करते थे समंदर में जाकर, और फिर समंदर के पास ही गदाधर पंडित का निवास स्थान था टोटा गोपीनाथ, और गदाधर पंडित तो इतने अनुगत ये अनुरागी भक्त थे श्रीमद् भागवतम के, कि वो श्रीमद् भागवतम को सुनाया करते थे, और चैतन्य महाप्रभु वहां जाके 3 या 4 घंटा बैठते थे और श्रीमद् भागवतम को सुनते थे। और चैतन्य भागवत और कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि महाप्रभु इन दोनों विषयों को बहुत अधिक सुनते थे। किन विषयों को? भक्त चरित्र को, वो थे प्रहलाद और ध्रुव महाराज के बारे में। एक ही दिन में 108 बार वो प्रहलाद का चरित्र सुनते थे, कई बार 100-100 बार। और जैसे वो प्रहलाद कुछ बोलते थे तो महाप्रभु अपने जगह से खड़े हो जाते थे और नाचने लगते थे, और कहते थे स्पीक अगेन, रीड अगेन, कहते थे बोलो, फिर से बोलो। किनको कहते थे? गदाधर पंडित को, नहीं ये स्किप हो गया है, ये फिर से बोलो तुम इस श्लोक को, और ध्रुव महाराज के चरित्र को फिर से सुनो, सुनाओ। तो इस प्रकार से महाप्रभु भगवान के भक्तों के बारे में सुनते थे, और उन्होंने भी अपने आचरण से ये श्रवण की जो शक्ति है या इम्पोर्टेंस है उसको स्थापित किया है। और ये भगवान के भक्तों के बारे में सुनने से पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के भक्तों के चरित्र को हम सुनते हैं तो 1% जो क्वालिटीज है उस भक्तों के अंदर की, जिनका चरित्र को हम श्रवण करते हैं, वो हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इसलिए आज भी बहुत ही जो महान वैष्णव अभिराम ठाकुर का तिरोभाव है, जिनके बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे अभिराम ठाकुर के बारे में। तो अभिराम ठाकुर जो बहुत ही महान भक्त हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, और भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनते हैं तो उसको हमें नकल नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, स्पेसिफिकली 4 भक्तों का नाम लिया था महाप्रभु ने, और उन्होंने अपने एक एक भक्त से एक एक शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु ने सहनशीलता की शिक्षा हरिदास ठाकुर से प्रदान की, कैसे सहनशील होना चाहिए, और विनम्रता की शिक्षा सनातन गोस्वामी से प्रदान की। तो इस प्रकार से वैष्णव सदाचार की शिक्षा उन्होंने दामोदर पंडित से प्रदान की। तो इस प्रकार से कई भक्तों से उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो प्रदान की। और ऐसे ही एक भक्त थे जो अभिराम ठाकुर थे, जिनको रामदास भी कहा जाता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे अद्वैत आचार्य की पुकार को सुन के इस भौतिक जगत में, और फिर नित्यानंद प्रभु जब अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहे थे सबके सामने, और भगवान ने भी अपने आप की जो भगवत्ता है उसका प्रकट नहीं किया था नवद्वीप में, तो नित्यानंद प्रभु पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, और नित्यानंद प्रभु दिल्ली भी आए थे। श्रीमद् भागवत में आता है दिल्ली का नाम चैतन्य भागवत में, कि वो दिल्ली में भी आए थे, और जहां उन्होंने हस्तिनापुर का नाम लिया और फिर पांडवों का उनको स्मरण हो आया, हाँ, और उन भक्तों के स्मरण से वो और आनंद अनुभव करने लगे। फिर वृंदावन गए, तो वृंदावन गए तो वृंदावन में जाके यमुना के किनारे नित्यानंद प्रभु बैठे थे और अपनी कई लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और भावावेश में वो बोल रहे थे। तो उनके हृदय में स्फूर्ति आई कि मुझे अभी गोवर्धन जाना चाहिए। तो गोवर्धन वो जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के साथ साथ एक गुफा उनको नजर आती है। तो उनमें ये जो भगवान के जो सेवक थे, भगवान के जो सखा थे, श्रीदाम सखा, जो अभिराम ठाकुर, जो चैतन्य लीला में अभिराम ठाकुर है, वो कृष्ण लीला में क्या है, श्रीदाम सखा है। तो ये जो श्रीदाम सखा है, जब नित्यानंद प्रभु कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे, तो ये श्रीदाम श्रीदाम कह के वो पुकारने लगे। कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा और उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि मैंने अवतार ग्रहण किया है कृष्ण भावना का, कृष्ण प्रेम की बाढ़ को सब में डुबाने के लिए, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे जो सखा है कृष्ण लीला में, जिन्होंने मुझे आनंद प्रदान किया था, श्रीदाम सखा, वो अभी तक, मैं चैतन्य लीला में यहाँ आया हूँ नवद्वीप में, वो अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मैं अपना कार्य नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कई वर्णन आता है। तो नित्यानंद प्रभु को कहते कि आप उनको लाओ, या नित्यानंद प्रभु के हृदय में उन्होंने प्रकाशित की होगी उस बात को। तो नित्यानंद प्रभु गोवर्धन में जाते हैं और श्रीदाम श्रीदाम कहते हुए चिल्लाते हैं। भक्ति रत्नाकर में ये वर्णन आता है। और जब श्रीदाम श्रीदाम कहते हैं तो एक गुफा से, गोवर्धन की गुफा से एक बहुत हाइटेड ऊंचा व्यक्ति बाहर निकलता है। हाँ, क्योंकि श्रीदाम जो कृष्ण के सखा थे, जो द्वापर युग से अभी तक थे, वहां गुफा में बिल्कुल आराम कर रहे थे कृष्ण के स्मरण में, और जैसे नित्यानंद प्रभु ने इस बात को बोला तो वो बाहर आ गए और उन्होंने बोला कि आप कौन हो। तो नित्यानंद प्रभु कहते कि आप नहीं जानते, मैं आपका बलाई हूं। बलाई कहते थे अपने आप को नित्यानंद प्रभु की, मैं बलाई मीन्स बलराम हूं कृष्ण लीला में। सची सुत जो चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बलाई हूं। कहते मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि बलराम तो इतने छोटे नहीं थे और बलराम तो इतना अद्भुत, मतलब अभी तो ये अवधूत वेश में है और बलराम का तो अद्भुत वेश था और पूरे अलंकरण और कई चीजों से सजे हुए होते थे। और उन्होंने कहा आप तो बलाई नहीं लगते हो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं बलाई हूं। तो कहते नहीं। तो कहते ठीक है, मैं अब चेक करता हूं कि आप बलराम हो या नहीं। तो कहते कि मैं अभी गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा और आपको मुझे कैच करना है। तो श्रीदाम जो कृष्ण लीला में और इतने हाइटेड थे, द्वापर युग की पर्सनैलिटी अभी तक थी, जो दौड़ने लगे, जिन्होंने चार परिक्रमाएं की बहुत तेजी से कि ये बलराम है तो मुझे कैच कर लेगा। तो जैसे ही चार बहुत तेजी से गोवर्धन की परिक्रमा की, एक ही रनिंग में, हाँ देखो कितने अद्भुत है, तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ा तो देखा, अरे वहां तो नित्यानंद प्रभु खड़े हैं उनके पीछे। तो देखा कि हाँ आप ही बलाई हो सकते हो, क्योंकि बलाई के अलावा कोई भी मुझे कैच नहीं कर सकता। तो कृष्ण लीला में जब ये गव्य चराने जाते थे तो इनका ऐसा कॉम्पिटिशन होता था, ये दौड़ते थे, पकड़ने की स्पर्धा होती थी, जैसे कृष्ण बुक में भी आता है एक लीला का वर्णन। तो इस प्रकार से वो मिलते हैं और आलिंगन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि अभी ये कलयुग है और मैं नहीं आना चाहता वहां। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो अभी नवद्वीप में अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, आपको वहां चलना होगा। तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मेरा तो इतना लंबा ऊंचा शरीर है। तो दो ग्रंथों में अलग अलग वर्णन आता है कि इतना लंबा उनका हाइट था तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि बलराम ने उनके सर में हाथ रखा और ऐसे दबाया, तो अभिराम ठाकुर जो श्रीराम सखा थे वो छोटे हो गए, नॉर्मल कलयुग के साइज के। और फिर और जगह वर्णन आता है कि जब ये नवद्वीप गए तो जब चैतन्य महाप्रभु से चर्चा कर रहे थे, तो फिर एक हाथ उनका चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ा और एक हाथ नित्यानंद प्रभु ने पकड़ा और दोनों ने ऐसे पकड़ के उनको नीचे कर दिया, तो वो फिर छोटे हो गए थे। तो इस प्रकार से ये जो श्रीदाम सखा है, जो द्वादश 12 जो मेन गोपाल है कृष्ण लीला में, उनमें से एक है सखा, और नित्यानंद प्रभु के वो संगी रहे हर समय चैतन्य लीला में, और जिनको रामदास भी कहा जाता है और अभिराम ठाकुर। तो ये अभिराम ठाकुर हर समय ये सख्य रस में होते थे भगवान के साथ, और ऐसा वर्णन आता है कि एक बार इनकी इच्छा हो गई बांसुरी बजाने की, तो देखा कोई इंस्ट्रूमेंट तो पास नहीं है, तो एक वो फॉरेस्ट में घुस गए। वहां जाके एक लकड़ी का पेड़ का बड़ा सा जो बड़ा लकड़ी है गट्ठा वो पड़ा था, उन्होंने उसको उठाया और वो बजाने लगे बंसी के रूप में, और उसमें ऐसा आता है कि 16 छेद उन्होंने बनाए थे अपनी शक्ति के द्वारा, और वो बजाने लगे तो इस और कई घंटे तक वो बजाते रहे, बल्कि 16 लोग उस गट्ठे को लकड़ी के उठा नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे अद्भुत रूप से उठाया और उसको बजाने लगे फ्लूट के समान। और ये ऐसे अद्भुत वैष्णव थे कि किसी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे और चेक करते थे हर एक को। तो वो क्या करते थे, उनके पास एक चाबुक था जिसका नाम था जय मंगल, तो जो भी जय मंगल की मार खाता था चाबुक की, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। तो उस समय बहुत सरल था कृष्ण प्रेम प्रकट करना। तो आप पढ़ेंगे प्रेम विलास में वर्णन आता है कि श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु वगैरह कई जो महान महान वैष्णव हुए हैं, ये सब पहले ये चाबुक का मार खाने के लिए अभिराम ठाकुर के पास गए, और सबने एक एक दो दो तीन तीन चाबुक खाए, और फिर उनके हृदय में इतना कृष्ण प्रेम जागृत हुआ कि वो चैतन्य महाप्रभु के लिए मैड हो गए, पागल हो गए। तो इस प्रकार से ये कलकत्ता के नजदीक एक खनाकुल कृष्ण नगर एक स्थान आता है जहां निवास करते थे, और जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है बंगाल में, और ये कृष्णानगर ये नाम पड़ा क्योंकि कृष्ण के मंदिर थे उस स्थान में, और खनाकुल मीन्स कि जो खन नाम की जो नदी है उसके तट पर ये जो स्थान था, और उस मंदिर के बाहर एक बकुल ट्री है, आज भी वहां जाते हैं तो सिद्ध बकुल कहा जाता है, सिद्ध बकुल कुंज कहते हैं उसे, तो वहां उसके नीचे ये रहते थे या कई अपना कृष्ण कथा करते थे। तो उस स्थान में एक गोपीनाथ के विग्रह है, जो एक दिन अभिराम ठाकुर रात को सो रहे थे तो अचानक कृष्ण गोपीनाथ उनके सपने में आए, और उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से मैं इस कृष्ण नगर में इस स्थान में जमीन के अंदर हूं, कि हे अभिराम आप मुझे वहां से बाहर निकालो। तो अभिराम ठाकुर सुबह उठते हैं, अपने कई संगियों को लेते हैं और उस स्थान को खोदते हैं, और उसके पास ही एक कुंड था, सब वो गोपीनाथ विग्रह प्राप्त होते तो बहुत आनंदित हो जाते हैं सारे विग्रह, और फिर उस कुंड में स्नान करते हैं सारे भक्तगण। आज भी वहां वो कुंड है, और जिस कुंड का नाम राम कुंड है, और ऐसा वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति उस राम कुंड में स्नान करता है तो फिर ये जन्म मृत्यु के सागर से उस कुंड में स्नान करने मात्र से वो मुक्त हो सकता है। तो चैतन्य चरित अमृत में आदि लीला में कृष्णदास कविराज उनका वर्णन करते हैं कि रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम राशि शोल सांगेर काष्ट जय तुली कैल बंशी, कि रामदास ये मुख्य शाखा है नित्यानंद प्रभु की, जो सख्य भाव में भक्ति में थे, और उन्होंने जो बड़े काष्ट को उठाया था और उसको बंसी के रूप में उसका यूज किया था। तो इस प्रकार से उनकी कई लीलाएं आती है, तो ये कुछ दो तीन लीलाएं मैं आपको सुनाऊंगा कि जब श्रीनिवास आचार्य जिन्होंने षड्गोस्वामी अष्टकम की रचना की है, जो बहुत यंग थे और उनको चैतन्य महाप्रभु के भाव के विग्रह कहा जाता है, उनके भाव से प्रकट हुए, उनके प्रेम से एक प्रकार से, ये दो पर्सनैलिटी असामान्य है, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य प्रकट होने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा था कि ये जब आपको मिलेंगे तो इनको वृंदावन भेजना। तो फिर ये जानवा माता से मिलने जाते हैं श्रीनिवास आचार्य। जानवा माता नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी हैं, वसुधा और जानवा, दो पत्नियां थी, तो उनको मिलने के लिए बंगाल में कटवा के पास ही आ जाता है, खड़दहा उस स्थान में जाते हैं। और जानवा माता उनको मिलती है, आशीर्वाद देती है, कहते कि आप वृंदावन जाने से पहले आप अभिराम ठाकुर को मिलना और अभिराम ठाकुर के चाबुक का मार जरूर खाना और तभी वृंदावन जाना। तो ये निकलते अभिराम और एक लेटर लिख के देती है जानवा माता। वो कहती है कि ये श्रीनिवास आचार्य है, श्रीनिवास है जो आएगा और इसको 3 बार चाबुक मारना, जानवा माता लिखती उस लेटर में। और वो लेटर लेके अपने हाथ में श्रीनिवास आचार्य जाते अभिराम ठाकुर के घर, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। और जब उनसे अपना लेटर देते हैं, हाँ, जैसे हम दूसरे टेम्पल जाना है तो प्रेसिडेंट का लेटर लेके जाते हैं, हाँ, तो उसी प्रकार से वो लेटर दे दिया और उन्होंने पढ़ा कि अरे तो जानवा माता का लेटर है, क्योंकि गौड़िया भक्त समाज की मेन आचार्य थे, हाँ, मेन आचार्य थी वो उस समय। तो लेटर पढ़ा तो उन्होंने कहा मैं इस भक्त को पहले चेक करूंगा क्वालिफाइड है कि नहीं चाबुक का मार खाने के लिए, इसका बिहेवियर कैसे है, इसका आचरण कैसे है, हाँ, इसको वैष्णव में श्रद्धा है कि नहीं, वैष्णव सेवा का महात्म्य कैसे है, इसका चेक करना चाहते थे अभिराम ठाकुर। तो अभिराम ठाकुर ने इनको 8 कॉइन्स दिए, 8 रुपीज कह सकते, 8 कॉइन दिए और पैसे दिए, 8 पैसे। तो उन्होंने ये 8 पैसे लिए और उन्होंने कहा कि आप जाओ मार्केट में ग्रेन खरीदो, जो सामान खरीदो, और आप अपना जो तो ये गए श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने